सुमन के खराब तबीयत ने आर्यांश और दीवा को एक बार फिर से करीब ला दिया था। विवाह की जिद करने पर आर्यांश को आराम करने के लिए उसके कमरे में आना ही पड़ा। दीवा ने जानबूझकर अपने बच्चे और पुरानी बातों का जिक्र छेड़ा। दीवा ने बातों ही बातों में आर्यांश को जता दिया था कि उसने उसे माफ कर दिया है। वो आर्यांश को भी यही समझा रही थी कि वो उस हादसे से बाहर निकले और खुद को उसका जिम्मेदार न माने। एक लंबे वक्त के बाद उनके बीच आराम से बात हुई थी। दीवा के माफ करने की वजह से आर्यांश के दिल का बोझ काफी हद तक हल्का हो गया था। वो दीवा के साथ सोफे पर बैठे बैठे सो गया था, जहां दीवा का सिर उसके कंधे पर था। सुबह 5 के करीब दीवा की आंख खुली। कमरे की लाइट अभी भी ऑन थी और आर्यांश अपना सिर पीछे लीन करके सोया हुआ था। उसे देखकर दीवा के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसे अच्छे से याद था रात को वो पहले सोई थी। उसके कंफर्ट के लिए आर्यांश वहीं पर बैठे बैठे सो गया। दीवा ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों को कसकर बंद करके कहा, अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे तो मुझे तुमसे पहले से ज्यादा प्यार हो जाएगा। पहले मुझे लगता था कि हमारे रिलेशन में सिर्फ मैं अकेली ही एफर्ट्स करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे लिए छोटी छोटी चीज करती थी, लेकिन अब तुम जो कर रहे हो उसके आगे वो कुछ नहीं था। पता नहीं तुम कब खुद को माफ करके एक नई शुरुआत करोगे। दीवा ने रात को ही महसूस कर लिया था कि आर्यांश ने एक बार भी दूसरे मौके के बारे में जिक्र नहीं किया था। शायद अब उसके लिए इतना ही काफी था कि दीवा ने उसे माफ कर दिया था। दीवा ने आर्यांश के हाथ को अपने हाथ में लिया और उसे वादा करते हुए मन ही मन कहा, आई प्रॉमिस, मैं हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक कर दूंगी, तुम्हें पहले जैसा कर दूंगी, हमारे बीच के हालातों को पहले की तरह कर दूंगी। दीवा ने आर्यांश के हाथ को हल्के से सहलाया, तभी उसने महसूस किया कि उसका हाथ काफी सख्त था। पहले ऐसा नहीं था। दीवा ने आर्यांश के हाथ को गौर से देखा तो वहां पर ठीक हो चुके छाले और चोट के काफी निशान थे। तुम बहुत बुरे हो आर्यांश, किसने कहा था तुम्हें इस तरह खुद को सजा देने के लिए? तुम्हें इस तरह देखकर मुझे खुद पर गिल्ट हो रहा है, दीवा ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखें नम होने लगी थीं। दीवा ने आर्यांश के चेहरे को प्यार भरी निगाहों से देखा। उसे अपना पुराना टाइम याद आने लगा था, जहां जब भी वो पहले उठती थी आर्यांश को इसी तरह जी भर के देखा करती थी। लेकिन पहले आर्यांश के चेहरे पर एक नरमी हुआ करती थी, वही नरमी अब सख्ती में बदल चुकी थी। दीवा जब आर्यांश के साथ में थी तब वो जब भी टाइम बिताते थे तब आर्यांश ज्यादा नहीं बोला करता था, बस दीवा बात करती रहती थी और आर्यांश उसे सुनता था। सबसे पहले तो उनके रिश्ते की शुरुआत ही अच्छी नहीं थी। दीवा उसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करती तो आर्यांश उसे अपने पास रखने की जिद करता। अगर दीवा और आर्यांश की लाइफ में कोई अच्छा मोमेंट शुरू हुआ था तो वो आर्यांश के प्रपोज करने के बाद से ही था। उस लम्हे को याद करके ही दीवा के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट उभर आई थी। उसका हाथ अपने आप अपने गले की तरफ चला गया। आर्यांश ने जब उसे प्रपोज किया था तब उसे एक पतला सा नेकलेस गिफ्ट किया था, जिसे दीवा ने कभी नहीं निकाला था। लेकिन अब दीवा ने जब गले में हाथ डाला तो वो खाली था। ना चाहते हुए भी दीवा को वो लम्हा याद आ गया था जब आर्यांश ने उस रात अपने हाथों से दीवा के गले से वो नेकलेस खींचकर निकाला था। उसके बाद दीवा के दिमाग में एक एक करके सारी बुरी यादें ही ताजा हो रही थीं। उसने जल्दी से आर्यांश से अपनी नजरें फेर ली थीं। वो फिर से उसे नफरत नहीं करना चाहती थी कि तभी इस बीच आर्यांश जाग गया था। दीवा अपनी यादों के भंवर में उलझी हुई थी, इस वजह से उसका ध्यान नहीं गया कि आर्यांश जाग चुका है। आर्यांश उसके चेहरे के बदले हुए भावों को देख रहा था। खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ मेरी गलतियां ऐसी नहीं है जिसे आसानी से भुलाया जा सके। अगर तुम ये माफ करने के ड्रामे और खुश रहने का फेक बिहेवियर करने के बजाय रियल बिहेव करोगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, आर्यांश ने ठंडे लहजे में कहा और जल्दी से दीवा के पास से उठकर खड़ा हो गया था। आर्यांश की आवाज सुनते ही दीवा का ध्यान टूट गया था। वो आर्यांश की तरफ हैरानी से देख रही थी। उसके बिना कुछ कहे ही आर्यांश ने सब समझ लिया था। ऐसा कुछ नहीं है, दीवा ने जल्दी से कहा। आर्यांश के चेहरे पर तंज भरी मुस्कुराहट थी। उसने आंखें घुमाकर कहा, तुम जानती हो ना, तुम झूठ बोलती हो तब नजरें नहीं मिल पाती हूँ। इधर उधर देखने के बजाय मेरी आंखों में देखकर बात करो, और मैं तुमसे इस बात की शिकायत नहीं कर रहा हूँ कि तुमने अचानक मुझसे नजरें क्यों फेर ली थी, जबकि पहले तुम स्माइल करते हुए मुझे देख रही थी। मैंने खुद ही हमारी अच्छी यादों को बर्बाद किया है, इसका जिम्मेदार मैं तुम्हें मानता भी नहीं हूँ, दीवा ने अपनी नजरें झुका ली थी। उसकी झुकी हुई नजरें आर्यांश की बात पर खुद बखुद सहमति जता रही थी। चलो रेस्ट करो और थैंक यू सो मच, मेरे लिए इतना काफी था, आर्यांश ने खुद को सख्त करके जवाब दिया, लेकिन उसका दिल जानता था कि उसने एक एक शब्द कैसे बोला था। जब उसकी नजरें खुली थीं, तो उसने पहले की तरह दीवा को अपनी बाहों में सोया हुआ देखा। वो उसके लिए किसी सपने की तरह था। लेकिन दीवा की बुरी यादें उस पर हावी होंगी और उसने जिस तरह उससे नजरें फेरी, उसके बाद आर्यांश का ये सपना कुछ ही पलों में टूट गया था। दीवा ने जल्दी से आर्यांश के चेहरे की तरफ देखा, जिस पर एक छोटी सी स्माइल थी। दीवा के कुछ कहने से पहले ही आर्यांश दूसरी तरफ पलट गया था। उसके चेहरे पर दर्द के घाव उभर आए थे। वो जल्द से जल्द उस कमरे से बाहर जाना चाहता था, क्योंकि अब उसे कमरे में वही घुटन और दर्द महसूस हो रहा था जो वो पिछले 3 सालों से अकेले में महसूस करता था। आर्यांश ने बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि दीवा ने उसका हाथ पकड़ लिया था। आर्यांश ने सिर घुमाकर दीवा की तरफ उलझन भरी निगाहों से देखा। तुम गलत हो, मैं कोई फेक बिहेव नहीं कर रही हूँ, मैंने सच में तुम्हें माफ कर दिया। हाँ, ये सच है कि एक पल के लिए कुछ बुरी यादें मेरे दिमाग में ताज़ा हो गई थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम ये बात खुद मानते हो कि तुमने खुद हमारी अच्छी यादों को बर्बाद किया है, तो जो हो चुका है मैं उसे बदल नहीं सकती हूँ, ना ही खुद के दिमाग को काबू कर सकती हूँ जो अचानक से पुरानी यादों को ताज़ा कर देता है, दीवा ने सख्त आवाज में कहा। वो आर्यांश को इस तरह मन में गलतफहमी लिए कमरे से बाहर नहीं जाने दे सकती थी। दीवा जानती थी कि अगर अब उसने इस बारे में खुलकर बात नहीं की तो फिर शायद ही उसे इसका मौका मिले। अभी जो हुआ उसके बाद आर्यांश उसके सामने तक नहीं आने वाला था। ठीक है, तो फिर खुद को तकलीफ मत दो। तुम्हें मेरी दी हुई तकलीफें तभी याद आती हैं जब मैं सामने आता हूँ। खुद के साथ इस तरह सख्ती दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, मेरे लिए इतना काफी है कि तुमने मुझे माफ करने के बारे में सोचा। आर्यांश भी नरम लहजे में जवाब दिया और दीवा को अपना हाथ छोड़ने का इशारा किया। दीवा ने तुरंत ना में सिर हिला दिया था। वो जल्दी से बोली, लेकिन मेरे लिए इतना काफी नहीं है, मुझे तुम्हें जाने नहीं देना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। आर्यांश, पागलपन करना बंद करो। अब तो समझ जाओ कि मेरे साथ रहकर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दर्द मिल सकता है। पहले क्या तुमने कम तकलीफें झेली हैं जो अब फिर से वही सब अपनी लाइफ में चाहती हो? आर्यांश ने उसे डांटा। उसकी आवाज सख्त और तेज हो गई थी। कभी कभी आर्यांश को समझ नहीं आता था कि दीवा इतनी नरम दिल कैसे हो सकती है। वो सब होने के बावजूद भी वो उसके साथ रहने की जिद कर रही थी।
वहीं आर्यांश के गुस्सा करने पर दीवा की आंखों में नमी उतर आई थी। आर्यांश उसे डराना या रुलाना नहीं चाहता था। उसने तुरंत दीवा को पकड़कर सोफे पर बिठाया और खुद उसके सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया था। हाँ, मैं अपनी लाइफ में सब कुछ पहले की तरह चाहती हूँ, पहले की तरह तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि रोज तुम मुझे हॉस्पिटल छोड़ने जाओ और जब मैं थक कर बाहर निकलूं तो हमेशा पार्किंग एरिया में पहले की तरह मेरा इंतजार करते हुए वहाँ खड़े रहो। वो मेरी जिंदगी के सबसे बेस्ट मोमेंट थे आर्यांश। मुझे नहीं पता तुम्हारे मन में उस वक्त क्या चल रहा था, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, अब भी करती हूँ। प्लीज़ मुझे मेरी पुरानी जिंदगी वापस लौटा दो, दीवा ने प्लीडिंग वॉइस में कहा और इस बार वो आर्यांश की आंखों में आंखें डालकर बोल रही थी, ताकि आर्यांश को ये ना लगे कि दीवा झूठ बोल रही है। मैं तुमसे प्यार करता था, हाँ जानता हूँ तुम्हें करीब लाने की मेरी इंटेंशन सही नहीं थी और उस रात मैंने बदला लेने के चक्कर में सब बिगाड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता था या मेरा प्रपोजल झूठा था। अपने गुस्से और जिद के चलते मैंने शहर का बदला लेने के लिए वो सब कुछ किया, लेकिन क्या तुम जानती हो कि मैं कभी वो करना ही नहीं चाहता था। हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स से मैं गुस्सा था इसलिए मैंने उनको माफ़ नहीं किया था, पर उस रात उस पार्टी में प्रियंका के साथ पहुंचकर तुमने मेरे गुस्से को बढ़ा दिया और मैं वो बेवकूफ़ी कर बैठा। खैर, मुझे पुरानी बातों के बारे में बात नहीं करनी है, जो बीत गया है उसे जाने देते हैं। दीवा, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, मैं यही चाहता हूँ, हम दोनों का साथ में कोई फ्यूचर नहीं है। आर्यांश ने दीवा को काफ़ी शांत लहजे में समझाया और इससे पहले कि दीवा आगे जिद करती वो उठकर जल्दी से बाहर चला गया था। इस बार दीवा ने उसे रोका नहीं, बल्कि वो वहीं पर बैठी आर्यांश की बातों पर गौर कर रही थी। पहले उसने इस तरफ ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब आर्यांश के कहने पर दीवा कुछ बातों पर गौर कर रही थी। जब भी दीवा के साथ रहते हुए आर्यांश को पुरानी यादें आती तो वो दीवा को हर्ट करने की बजाय उसे अकेला छोड़कर चला जाता था। हालांकि दीवा इस बात पर उससे हमेशा नाराज हो जाती थी। मन ही मन उसे यही लगता था कि आर्यांश उससे प्यार नहीं करता, वो अभी भी अपने पास्ट में अटका हुआ है। आसपास के लोगों ने भी उसे ये यकीन दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर आज आर्यांश के बताने के बाद दीवा को सच समझ में आ रहा था। वो इसलिए उसे छोड़कर जाता था ताकि अपने बदला लेने की जिद में वो दीवा को हर्ट ना करते। दीवा ने अपनी आंखों को कसकर बंद किया। वो उस रात के पहले के बारे में सोच रही थी। प्रियंका के कहने पर दीवा ने आर्यांश को उसके दादाजी के बर्थडे पार्टी में ले जाने के बारे में कहा था, लेकिन आर्यांश ने उसे साफ मना कर दिया था। वो पहले दीवा और अपने मामले को सुलझाना चाहता था। दीवा ने खुद देखा था कि किस तरह आर्यांश ने उसके लिए मेहनत भी की थी। ये सौरभ बजाज था जो दीवा का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती आगे लेकर गया था। क्या हम सब मिस्टर बजाज के मोहरे बन गए थे? ये सब उन्होंने जानबूझकर किया, दीवा ने हैरत भरे लहजे में कहा। अब दीवा को सब आईने की तरह साफ नजर आ रहा था। उसका और आर्यांश का रिश्ता तोड़ने के पीछे की साजिश उसे अच्छे से समझ आ रही थी। दीवा जल्दी से उठी और आर्यांश से बात करने के लिए फिर से उसके पीछे जाने लगी। क्या ये साजिश सिर्फ आर्यांश और दीवा के रिश्ते को तोड़ने तक ही थी या कुछ और भी चल रहा था जो उनकी नजरों के सामने नहीं आया था? चलिए फिलहाल के लिए इतना ही और गैप के लिए सॉरी यार, थोड़ा बिजी चल रही हूँ तब नहीं लिखा गया। बस 2 तारीख के बाद कंटिन्यू आने लगेगा सब, पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। कुछ समझ आया आपको आखिर सौरव ने क्या प्लान किया होगा?